ಗೋಪಾಲಂ ಬೃಂದಾರಣ್ಯ ಪುರಂದರಂ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇಹಂ ದೀನಾನುಗ್ರಹಕಾರಕಂ ವಂದೇ ಮುಕುಂದಮರವಿಂದದಲಾಯತಾಕ್ಷಂ ಕುಂದೇಂದು ಶಂಖದಶನಂ ಶಿಶುಗೋಪವೇಶಂ ಇಂದ್ರಾದಿದೇವಗಣವಂದಿತ ಪಾದಪೀಠಂ ವೃಂದಾವನಾಲಯಮಹಂ ವಸುದೇವಸೂನುಂ ನವಜಲಧರವರಣಂ ಚಂಪಕೋದ್ಭಾಸಿಕರಣಂ ವಿಕಸಿತನಲಿನಾಶಯಂ ವಿಸ್ಫುರನ್ ಮಂದಹಾಸಯಂ ಕನಕರುಚಿದುಕೂಲಂ ಚಾರುಬರ್ಹಾವಚೂಲಂ ಕಮಪಿ ನಿಖಿಲಸಾರಂ ನೌಮಿ ಗೋಪೀಕುಮಾರಂ ವಂಶೀ ವಿಭೂಷಿತಕರಾನ್ನವನೀರದಾಭಾತ್ ಸೀತಾಂಬರಾದರುನಬಿಂಬಫಲಾಧರೋಷ್ಠಾತ್ ಪೂರ್ಣೇಂದು ಸುಂದರ ಮುಖಾದರವಿಂದನೇತ್ರಾತ್ ಕೃಷ್ಣಾತ್ ಪರಂ ಕಿಮಪಿ ತತ್ವಮಹಂ ನ ಜಾನೇ ಶ್ರೀರಾಮಯ ಸವ ಜಗಜಾನೀ ಕರೋ ಪ್ರಣಾಮ ಜೋರ್ ಜಿಗುಪಾಯಿ
आप समस्त महानुभावों और माताओं के रूप में अभिव्यक्त भगवान के चरणों में नमस्कार। एक प्रश्न है, सर्वत्र भगवान को देखते हुए समता का व्यवहार कैसे किया जाए। संक्षेप में इसका उत्तर पहले दे दिया जाए। समता मन में रहती है, व्यवहार में नहीं रहती। जैसे अपना शरीर है और शरीर में पैर से लेकर चोटी तक सब जगह समान आत्मभावना है। कहीं भी हमारा मन में विषमता का जरा भी भाव नहीं है। अगर पैर में चोट लगेगी हमको लगेगी, सिर पर लगेगी हमको लगेगी। हम पैर को सिर को सबको बचाना चाहेंगे, सबकी रक्षा करना चाहेंगे, किसी भी अंग की अवहेलना हम नहीं करेंगे, लापरवाही नहीं करेंगे, किसी भी अंग को जानबूझकर हम दुख नहीं देंगे। एक अंग पर विपत्ति पड़ने पर सारे अंगों को उसके ठीक होने में लगा देंगे। ये बिल्कुल शारीरिक शास्त्र का एक नियम है। शरीर में कहीं अगर फोड़ा हो गया, कमी आ गई कोई, तो शरीर के सारे अवयव अपने आप उस अंग को ठीक करने में लग जाते हैं, स्वाभाविक। इसलिए शरीर में कहीं भी हमारी विषमता नहीं है, विषमता का भाव नहीं है। परंतु का क्या व्यवहार एक साथ कर सकते हैं? जहां जो काम जिस अंग से होना है उसी से होना है, दूसरे अंग से हो नहीं सकता। और यदि कोई करने जाता है तो या तो वो पागल है, या किसी बीमारी से ग्रस्त है, या मूर्ख है। कोई अगर हाथ से चलना चाहे, पैर से लेन देन करना चाहे, तो मूर्खता, वो लोग कहेंगे तो पशुवत व्यवहार करता है। अंगों में आत्मभाव में कहीं भेद नहीं, पर हाथ का काम हाथ से। अपने तो हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार तो दाएं बाएं हाथ में भेद है। व्यवहार में बाएं हाथ से हम खाते नहीं और दाएं हाथ से हम शौच जाकर धोते नहीं। शौच जाकर हम धोएंगे बाएं हाथ से और खाएंगे हम दाहिने हाथ से। परंतु क्या हाथ में चोट लगने पर दाएं बाएं का भेद होता है दर्द होने में, रक्षा करने में? तो समता जो होती है वो व्यवहार में नहीं होती। एक बात बहुत ध्यान में रखने की है बड़ा, वो ये है कि जगत की उत्पत्ति होती है तब जब प्रकृति में विषमता आती है। ये सृष्टि का तत्व है, जहां पर प्रकृति साम्य है, जहां पर तीनों गुण समान हो गए वहां महाप्रलय हो जाएगा, प्रकृति रहेगी नहीं, ये संसार रहेगा नहीं। संसार तब उत्पन्न होता है जब प्रकृति में विक्षोभ होकर विषमता होती है। गर्भाशय में यदि रक्त ठीक रहे, उसमें कोई विक्षोभ न हो, तो बच्चा नहीं पैदा होता। गर्भाधान होने पर उसमें एक विक्षोभ होता है, विकार पैदा होता है, तब बच्चा उसमें बनता है। तो तस्मिन गर्भम दधाम्यहम्, भगवान ने कहा कि प्रकृति में मैं अपने संकल्प से स्थापना करता हूं गर्भ की। जब भगवान संकल्प करते हैं कि ये जगत बने, सृष्टि बने, तो भगवान का ये संकल्प प्रकृति में विक्षोभ पैदा करता है, विषमता आती है, तब जगत बनता है। तो जब तक प्रकृति है और जब तक जगत है, तब तक हम चाहे किसी अंश में अर्थ साम्य कर दें। आज जो संसार में एक लहर चली है ना, अर्थ साम्य हो और श्रेणी न रहे, वर्ग न रहे और धन सबके पास समान हो, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, भी होता नहीं है। सब हुकूमत नहीं कर सकते, सब में हुकूमत करने का बल नहीं है, बुद्धि नहीं है, विज्ञान नहीं है। अगर किसी न्यायालय में जज के स्थान पर बोले आदमी आदमी सब एक से और सबका समान अधिकार, किसी मूर्ख को बैठा दिया जाए तो क्या करेगा? सबकी बुद्धि एक सी नहीं, सबके विचार एक से नहीं, सबके शक्ति शरीर की एक सी नहीं, सबके मन की शक्ति एक सी नहीं, सबका कद एक सा नहीं, सबके खान पान की रुचि एक सी नहीं। ये जगत का जो वैचित्र है, ये भगवान लीलामय का ये लीला क्षेत्र, इसमें एक चीज भी ऐसी नहीं है जो दूसरे से पूरी पूरी समान मिलती हो। ये जगत की जो विषमता है ना, ये तो हमारे सामने नाच रही है। कोई आदमी जगत की विषमता को मिटाना चाहे तो वो पागल है, मिट नहीं सकती जगत की विषमता, मिट नहीं सकती। ये तो रहेगी सब समान, सब बात में हो नहीं सकते। अर्थ साम्य किसी अंश में हो जाए, और वो होना बहुत अंश में ठीक भी है, जब समाज में, जब राष्ट्रों में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि किसी एक श्रेणी के पास, किसी एक वर्ग के पास बहुत धन इकट्ठा हो जाता है,